थर्ड लेसन पेज नंबर 10 भारत की नदियां और उनके मैदान। अगर तुम भारत के नक्शे में उत्तर की तरफ देखो तो हिमालय पर्वतमाला दिखेगी। वहां से थोड़ा पूर्व दिशा की ओर चलोगे तो काराकोरम पर्वतमाला दिखेगी। पर्वतमाला का मतलब है बहुत सारे पहाड़ एक के बाद एक आगे पीछे। इन्हीं पहाड़ों में से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। नदियां जब पहाड़ों से निकलती हैं तो वे ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी गहरी पथरीली घाटियों के बीच से बहुत तेजी से बहती हैं। पेज 11। नदी के बहाव में इस तेजी का कारण है पहाड़ों की ढलान। ठीक उसी तरह जिस तरह तुम फिसलकर सरर से फिसल जाते हो। जरा मैदान में फिसलने की कोशिश करके देखो, क्या उतनी तेजी से फिसल पाए या बिल्कुल ही नहीं फिसले। ऐसे ही नदी भी मैदान में आते ही धीमी हो जाती है। पहाड़ों से टकराने के कारण नदी जो आवाज करती है वह भी मैदान में आते ही हल्की पड़ जाती है, क्योंकि मैदान में टकराने के लिए पहाड़ तो होते ही नहीं। मैदानों में नदियां बहुत चौड़ी हो जाती हैं। नदी के पानी के साथ जो रेत और मिट्टी बहती है वह उसके किनारों पर जमा होती रहती है। इसमें पेड़ों के सड़े गले पत्ते भी मिल जाते हैं। इसके कारण नदी के किनारे की मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती है। और तुम जानते ही हो कि उपजाऊ जमीन पर खेती कितनी अच्छी होती है। इसलिए नदी और जमीन में बहुत गहरा रिश्ता है। मैदानी इलाकों में एक जगह से दूसरी जगह पर जाना आसान होता है, इसलिए वहां बहुत सारे लोग रहते हैं और खेती बाड़ी का काम करते हैं। कितने सारे बड़े बड़े शहर हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, जैसे गंगा नदी के किनारे कोलकाता, पटना, इलाहाबाद बसा हुआ है, और हमारी दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी है। पेज 12। नदियों की शुरुआत और अंत। नदियों के बारे में अक्सर यह लगता है कि वे बस बहती चली जाती हैं। क्या तुम यह जानना चाहते हो कि नदी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म हो जाती है? इसके लिए दो बातें याद रखनी पड़ती है। पहली यह कि नदी आमतौर पर किसी पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है। दूसरी बात यह कि नदी हमेशा किसी समुद्र या झील में गिरती है, क्योंकि मैदानी जमीन का ढाल समुद्र की तरफ होता है। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि नदियां पहाड़ी क्षेत्रों से ही क्यों निकलती है? सीधी सी बात है, उत्तर भारत में हिमालय पर्वतमाला है जिस पर पूरे साल ढेर सारी बर्फ जमी रहती है। जब वह बर्फ पिघलती है तो वह पानी बनकर नदी का रूप ले लेती है। गंगा, यमुना, सतलुज ऐसी ही नदियां हैं। इनमें सालों भर पानी रहता है। जिस तरह भारत की उत्तरी दिशा में हिमालय पर्वतमाला है, उसी तरह पश्चिम और दक्षिण में भी पहाड़ हैं। उन पहाड़ों पर बर्फ नहीं जमी हुई है, लेकिन नदियां तो इन पहाड़ों से भी निकलती है, क्योंकि बारिश का पानी पहले पहाड़ों से बहते हुए नदी का रूप ले लेता है। ऐसी नदियों को मौसमी नदियां कहते हैं। चंबल और बेतवा ऐसी ही नदियां हैं। पेज 13। खाली स्थान भरो। इन नदियों की शुरुआत और अंत के बारे में लिखो। क: नर्मदा नदी किस पहाड़ से निकलकर किस समुद्र में गिरती है? और ख: गंगा नदी किस पहाड़ से निकलकर किस समुद्र में गिरती है। नदी किसी भी पहाड़ से निकले और कितने ही इलाकों से गुजर ले, वह अंत में समुद्र में ही जाकर गिरती है। नदी जो सफर पहाड़ से शुरू करके समुद्र में खत्म करती है, वह बहुत ही लंबा सफर है। इस सफर में नदी कई गांव, शहरों एवं देशों को भी पार करती है। जैसे सिंधु नदी 3 देशों में बहती है, चीन, पाकिस्तान एवं भारत। हुआ ना बहुत लंबा सफर। जैसा कि तुमने पहले पढ़ा कि नदियों के किनारे मैदानों की जमीन बहुत उपजाऊ हो जाती है। मैदान की जमीन समतल होती है, ऊबड़ खाबड़ या पथरीली नहीं होती, इसलिए वहां जीवन बहुत आसान हो जाता है। यह समझने के लिए चलो हम पंजाब राज्य के बारे में पढ़ते हैं। नदियों की गोद में बसा एक राज्य पंजाब। हमारे जीवन में नदियों का बड़ा महत्व है। नदियों के किनारे रहने वाले लोग उनसे तरह तरह के फायदे उठाते हैं। 1. क्या तुम्हारे शहर के पास कोई नदी बहती है? 2. शहर में लोग नदी का क्या क्या उपयोग करते हैं? 3. क्या उसमें साल भर पानी रहता है? पेज 14. 5 नदियों का प्रदेश पंजाब। जानते हो पंजाब को यह नाम कैसे मिला? इसका बहुत ही रोचक कारण है। इस राज्य में 5 नदियां बहती है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। पंच यानि 5 और आब यानि पानी, तो बन गया पंजाब। अब एक बॉक्स है, बॉक्स में सरदार जी खूब नाच रहे हैं रंगीन कपड़े पहन के। देखो क्या लिखा है, किसान खेतों में कड़ी मेहनत करें और भरपूर फसल मिले तो क्यों नहीं नाचें। इस चित्र में पंजाब के किसानों को भांगड़ा करते हुए दिखाया गया है। वे लुंगी और कुर्ता पहनकर, सर पर रंगीन पगड़ी बांधकर, ढोल की तेज ताल के साथ नाचते हैं। बॉक्स क्लोज्ड। पंजाब अपनी अच्छी नस्ल की गाय या भैंस के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। यहाँ की गायें व भैंसें सेहतमंद होती हैं और खूब सारा दूध देती हैं। एक दिन में एक भैंस से 10-12 लीटर दूध मिलना यहाँ के लिए आम बात है। पंजाब के लोगों के भोजन में दूध, घी, मक्खन, पनीर, लस्सी आदि का बहुत उपयोग होता है। पेज 15। पंजाब के सारे शहरों में दूध के कारखाने यानी डेयरी है। इनमें दूध को ठंडा करके पैकेट में बंद करके दूर दूर के इलाकों में भेजा जाता है। दूध से मक्खन, घी और पनीर भी तैयार किया जाता है। इन चीजों को पूरे देश में बेचा जाता है। दूध की मांग को देखते हुए यहाँ के किसान अधिक भैंस पालने लगे हैं। खेतों में साल भर बरसीम जैसा हरा चारा बोया जाता है। धान का भूसा और कपास के बीज की खल्ली, जो कि बहुत पौष्टिक होती है, पशुओं को खिलाई जाती है। पंजाब न केवल दूध के लिए बल्कि अपने हरे भरे खेतों के लिए भी मशहूर है। यहाँ हर साल इतना अनाज उगता है कि पूरे राज्य में अनाज की ही मंडियां दिखती है। उन मंडियों में ट्रकों व ट्रैक्टर ट्रॉलियां का तांता लगा रहता है। जहां देखो वहां अनाज के ढेर दिखेंगे, एक एक ढेर 10-12 फीट ऊंचा। इन्हें खरीदने के लिए देश भर से व्यापारी यहाँ आते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं सिंचाई के बारे में। सिंचाई। पंजाब में इतनी अच्छी खेती होने के कई कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मैदानी इलाका है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, सिंचाई की सुविधाएं हैं। सतलुज नदी पर बहुत बड़ा बाखरा नांगल बांध बना है। नदी के पानी को रोककर नहरों द्वारा गांव गांव पहुंचाया गया है। पेज 16। बांध पर बिजली भी बनाई जाती है जो तारों से गांव गांव तक पहुंचती है। जरूरत पड़ने पर किसान बिजली से चलने वाली मोटर से पानी खींच सकते हैं, थ्रेशर जैसी मशीनों का उपयोग कर सकते हैं। अगर केवल बारिश के पानी से सिंचाई करें तो एक साल में केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है, लेकिन पंजाब में एक साल में तीन फसलें होना एक बहुत ही मामूली बात है, क्योंकि एक तो पांच नदियों का इतना सारा पानी और उस पर सिंचाई की इतनी अच्छी सुविधा। यहाँ खेतों में साल भर इतना काम होता है कि दूसरे राज्यों से भी मजदूर काम करने आते हैं। पेज 17। देश में नए किस्म के बीज, रासायनिक खाद, दवा, ट्रैक्टर आदि का चलन शुरू हुआ तो पंजाब के किसानों ने इन्हें तेजी से अपनाया। आधुनिक तकनीक के अंधाधुंध इस्तेमाल से खेती में नुकसान भी होता है। बहुत अधिक पानी देने के कारण मिट्टी खराब हो रही है, कहीं कहीं मिट्टी में नमक जम जाता है और कहीं कहीं दलदल बन जाता है। इस कारण कुछ क्षेत्रों में जमीन अन उपजाऊ होती जा रही है। रासायनिक खाद और कीटनाशक आदि का उपयोग अधिक होने के कारण जमीन की उपज घटती जा रही है। पीने के पानी, मछली, अनाज, सब्जी आदि पर इनका बुरा असर पड़ रहा है। इसका पशु पक्षी व लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर हो रहा है। अब पंजाब के किसानों को मिट्टी व पानी को खराब होने से बचाने के तरीके ढूंढने पड़ रहे हैं। पंजाब की सबसे जानी मानी जगह है अमृतसर शहर का स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर यानी सोने का मंदिर। यह मंदिर एक सुंदर चौकोर सरोवर यानी तालाब के बीच में बना है। इसमें कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक बड़ी पुस्तक रखी है। पुस्तक का नाम है श्री गुरु ग्रंथ साहब। तुमने गुरु नानक, बाबा फरीद, कबीर, रैदास आदि संतों के नाम सुने होंगे। इस पुस्तक में इन महान संतों की कही बातें लिखी हुई हैं। सिख लोग इस पुस्तक को बहुत पवित्र मानते हैं। उनके लिए यह स्वर्ण मंदिर प्रमुख तीर्थ स्थान है। पेज 18। अभ्यास क्वेश्चन नंबर 1। कौन से राष्ट्र मैदानी भाग में आते हैं? 2। नदी किस तरह मनुष्यों की सहायता करती है? और 3। दिल्ली में यमुना नदी को देखकर चित्र बनाओ।